أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب عافیت میں ہوں. اس سے پہلے کہ صحیح بخاری کا سیشن شروع کریں اگلا، تھوڑا سب سے اپنی فیلنگ شیئر کروں، اور میں چاہوں گی کہ ان فیلنگز کو ایز اٹ از بعد میں بھی رکھا جائے تاکہ کچھ لائیولی جذبات کو محسوس کر سکیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج ہم نیا باب شروع کرنے والے ہیں، صحیح بخاری کا کتاب الغسل یعنی نہانے کا باب. اس باب کے بارے میں تو بات کروں گی، لیکن جو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی سعادت محسوس کر رہی ہوں اپنے اوپر، وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ سیشن لینے کا اتفاق مجھے مسجد نبوی سے ہو رہا ہے. بالکل مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کر یہ چیز بتانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو محسوس کرنا، یہ کوئی اس وقت میرے دل سے پوچھے. ہم لوگ اس وقت مدینہ میں ہیں، عمرے کے ٹرپ کے سلسلے میں، جمعہ مبارک کا دن ہے، تقریباً 11:00 ہیں اور ہم یہ حدیث پڑھنے لگے ہیں. کیا وہ وقت ہوگا کہ جب اسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے یہ باتیں یا تو بتائی ہوں گی، یا انہی مدینہ کی گلیوں میں اللہ کے نبی کو چلتا پھرتا دیکھ کر لوگوں نے آپ سے علم لیا ہوگا. جب سے مدینہ میں آئے ہیں یہی کیفیت ہے، پہلے بھی ہوتی ہے، ہر سال ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کے ہوتی ہے. اس سال جو کہ حدیث بھی پڑھا رہی ہوں ساتھ ساتھ، تو جب سے مکہ کے راستوں سے نکلے تو مدینہ کی راستے وہ تو سیرت کے کھیل ہیں، لیکن حدیث علم اور مسجد نبوی کا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. لیکن اس وقت آئیے حدیث شروع کرتے ہیں اس شعور کے ساتھ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے یہ موتی چننے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کے اگلے باب کا آغاز کریں گے، اور یہ باب ہے کتاب الغسل. غسل غسلہ سے قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے، تغتسلوا اغسلوا، نہانے کے لیے، صاف کرنا. پیج ہے کتاب کا 180. اور کتاب الغسل کی ضرورت کیا تھی، تھوڑا سا اس پہ بات کروں گی. بہت ہی دل کو نرم کرنے والی بات ہے کہ وہ کون سا دنیا کا دین ہے اسلام کے سوا جو انسانوں کو قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ بدنی طہارت بھی سکھاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ جو باتھ روم میں جاتے ہیں تقریباً روز ہی غسل کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے دین کا حصہ ہے؟ کیا یہ بھی کوئی سیکھنے کی بات ہے؟ کیا اس کے لیے بھی کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ عموماً ہم لوگ یہ ساری چیزیں کیسے کرتے ہیں؟ بس عادتاً کر لو. کوئی غسل کرتے ہوئے نہاتے ہوئے گاتا ہے، تو کوئی گنگناتا ہے، تو کوئی باتیں کرتا ہے، تو کوئی غسل کرتے ہوئے ٹاول مانگتا ہے، تو کوئی ساتھ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. ہمارا دین مکمل دین ہے. اس کو پڑھتے وقت اپنے دل کو چیک کریں، کیا میں نے کبھی سوچا کہ میرا دین مجھے جو غسل کے طریقے بتانے میں اتنی باریکی دکھاتا ہے، تو زندگی کے پھر بڑے بڑے معاملے جس میں جینا مرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، لینا دینا، تجارت، کاروبار، بزنس، سود، کیا پھر اس پہ مجھے چھوڑ دے گا؟ اب اس شعور کے ساتھ آئیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. کتاب الغسل، حدیث نمبر 185 ہے، 185، اور پہلا باب ہے اس کا، باب الوضو قبل الغسل، وضو کرنا غسل سے پہلے. تو پہلی یہ چیز نوٹ کیجئے کہ وضو غسل کا حصہ ہے. ہم پڑھ لیں حدیث کو، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی عنہا، حضرت عائشہ جو کہ زوج رسول تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اللہ ان سے راضی ہو، ان سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان تھے، اغتسل، جب وہ غسل فرماتے، من الجنابتی، جنابت سے. یہاں تک رکیے. آپ کی زوجہ آپ کے غسل کی کیفیت نوٹ کروا رہی ہیں. اس سے اور بھی بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت درپردہ مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. कैसे शुरू करते थे? बदा फगसल यदई ही, शुरू करते फिर धोते अपने दोनों हाथों को। ज़रा हज़रत आयशा देख रही थी तभी तो ये बात बयान कर रही है ना। तो आगाज़ क्या था? दोनों हाथों के धोने से। सुम्मा फिर यतवद्दाउ, फिर वो वजू करते, कमा जैसे कि यतवद्दाउ, वो वजू करते लिस सलाती, नमाज के लिए। यानी गुसल का आगाज़ वजू से होगा, और वजू कौन सा होगा? जैसा कि नमाज का वजू होता है। अभी इतनी बात समझे, फिर आगे जाके हम इसकी छोटी छोटी और चीज़ें भी देख लेंगे। फिर क्या करते थे? सुम्मा फिर युदखिलु, वो दाखिल करते असाबियहु, अपनी उंगलियों को फिल माई, पानी में। फिर क्या करते? यानी पानी में उंगलियों को डालते, यानी इसको यूं कह लीजिए कि हम अपना हाथ टूटी के नीचे रखेंगे, या किसी टब में पानी है तो उस पानी से अपनी उंगलियों को तर करेंगे। फिर वो गीली उंगलियों से क्या करते? फयुखल्लिलु बिहा, फिर खिलाल फरमाते उनके साथ। खाल, ये जो युखल्लिल है ना, ये वही जिसको उर्दू में हम कहते हैं ना, खलल नहीं डालो, खलल अंदाजी पसंद नहीं। खल्ला युहल्लु, देखिए दो लफ्ज़ हैं, एक है हा और एक है खा, फर्क है ना। वहाँ के वहलुल उकदतम मिल लिसानी, यहाँ के खल्ला। तो बुनियादी तौर पे खिलाल ऐसे होता है कि उंगलियाँ डालकर जड़ों तक पानी पहुँचाना, ठीक है। दाढ़ी का खिलाल अक्सर किया जाता है, उंगलियों का भी होता है। तो फयुखल्लिलु, फिर वो खिलाल फरमाते बिहा, साथ उसके उसूला जड़ों को, अशारी बालों की, यानी अपनी उंगलियों से बालों की जड़ों का खिलाल करते। सुम्म फिर यसुब्बु, वो डाल देते अला रासी ही, अपने सर पर सलासतीन गुरफिन चुल्लू भी यदि ही, अपने हाथ से। कहाँ पड़ा अपने गुरफ? सोचिए तालूत और जालूत में क्या कहा था? इल्ला मनिख तरफा का लफ्ज आया था, मगर जो कोई भर ले चुल्लू, ठीक है। तो वही लफ्ज है यहाँ। गुरफा बुनियादी तौर पे पाम को कहते हैं, जैसे हम हथेलियाँ कहते हैं ना, या जैसे हथेली को एक खास बर्तन की शक्ल का बनाना कि उसमें कुछ पानी ठहर जाए, उसको गुरफा कहते हैं। गुरफ, देखिए गुरफा कमरे को भी कहते हैं ना कुरान पाक में, आप पढ़ते गुरुफात जन्नत में, गुरफे का लफ्ज़ है। आप अरब मुल्कों में अभी भी, इवन जहाँ हम हैं, तो कमरे को गुरफा कहते हैं ना। जब होटल में आते हैं तो वो पूछते हैं गुरफा या गुरफतैन, कमरा या दो कमरे। तो बुनियादी तौर में इसमें एक, जैसे एक आप कह लें हॉलो सी चीज़ का इमेज आता है ना, कमरा भी तो ऐसे होता है ना, एम्प्टी है चारों तरफ से दीवारें, तो वही चीज़ जहाँ है। सलास गुरफिन, तीन चुल्लू भी यदि ही, अपने हाथ में। सुम्मा फिर युफीदुल माअ, फिर वो डालते पानी अला जिल्दी ही, अपनी जिल्द पर, कुल्ली ही सारी की सारी, यानी फिर सारे जिस्म पर पानी डाल देते। ये बुखारी की रिवायत है। देखिए अब पहली बात आप समझिए कि हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या कुछ सुनेंगे। हज़रत आयशा की इस रिवायत से क्या पता चला? शुरू में वजू किया और फिर सर से पांव तक पानी डाल दिया तो गुसल हो गया। तो याद रखिए कि गुसल में बदन पर पानी बहाने से, यानी सर से पांव तक पानी गिर जाए, पहुंच जाए, तो गुसल का फ़र्ज अदा हो जाता है। दो चीज़ें लिख लें, मैं बहुत बारीकियों में और मुश्किल चीज़ों में नहीं आपको डालना चाह रही। सिंपल सी बात सोच लें, किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि वो हो जाए, काम हो गया। दूसरा ये कि अब उसको मज़े का भी करना है। हम खाने की मिसाल ले लेते हैं, आपको पुलाव बनाना है, क्या करें? पहले ऑयल डालें, गर्म करें, फिर उसमें प्याज करें, ज़रा सा रंग बदलने लगे, उसमें पानी नमक डाल दें और कुछ भी डाल दें, चने डालने हैं, सब्जी डालनी है, और चावल डाल के दम दे दें, पुलाव तो बन गया ना। ये है लीस्ट थिंग। अब पुलाव जिसने बनाना है उसको सबसे पहले प्याज फ्राई करना पड़ेगा। लेकिन आप इस पुलाव को मज़े का कैसे कर सकती हैं वो आप सबको मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पता है। पुलाव में आप कहीं जलबत्री डालेंगी, कहीं लौंग डालेंगी, गरम मसाले डालेंगी, कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्चें डालेंगे, फिर उसमें गोश्त डालेंगे, यखनी, तो वो क्या है? पुलाव का हुसन। इसी तरह हमारे दीन की हर इबादत, क्योंकि अब हम इस वक्त फिक्की मसाइल पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आज उम्मत जो इतनी छोटी छोटी बातों पर झगड़ती है उसमें हलाल और हराम का ताल्लुक नहीं है, बस ये कह ले राजे हर मर्जू, गुड एंड बेटर का और दी बेस्ट का ताल्लुक है। तो आम तौर पे वजू की दो शरारतें, यानी गुसल की दो शर्तें लिख लें, सिंपल चीज़ें, ये दो कर लेंगे तो आपका गुसल हो गया। नंबर एक इंटेंशन, दिल में नियत, खड़े होके नहीं करेंगे कि जाती हूँ बाथरूम में, करूँगी वजू और करूँगी गुसल, ये नहीं, नियत। आप सर से पांव तक निकल के डुबकी मार के भी किसी हौज से निकल आएंगे ना तो आपका गुसल नहीं होगा जनाबत का, अगर नियत ना हो, ठीक है। और ये खास तौर पर उस गुसल की बात है जो फ़र्ज होता है, यानी शौहर बीवी के ताल्लुक के बाद और इसी तरह से पीरियड्स के बाद का। तो पहली चीज़ नियत, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस नियत से गुसल कर रही हूँ, यानी मैं नापाक था या मैं नापाक थी और मैं पाक होने लगी हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कि सर से लेकर पांव तक पानी डालना, दैट्स इट। ये दो चीजें हो गई, आपका गुसल हो गया। ठीक है, फिर दोहरा देती हूँ। नंबर एक, नियत दिल के अंदर पता हो, इरादे के साथ आप गए गुसल करने के। और दूसरी बात है कि कुछ नहीं किसी को पता, कोई न्यू मुस्लिम है जिसको भी इस्लाम का कुछ नहीं पता, तो बस शावर के नीचे खड़ा होकर सर से लेके पांव तक पानी डालेगा कि सर गीला हो जाए। फिर इसके दोनों का गुसल का फर्क भी है, पीरियड्स के गुसल का और जनाबत का। इंशाल्लाह इसी चैप्टर के एंड तक आपको फर्क भी वाजे हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो था फर्ज। अब इस हदीस में क्या पता चला कि वजू किया, तो क्या पता चला कि गुसल का हुसन क्या है कि नबी सल्लम इससे गुसल से पहले वजू भी करते थे। ठीक है, तो मसनून क्या होता तरीका जो अल्लाह के नबी ने किया, बस इतनी बात समझ लें कि वजू करना है और करें। क्योंकि जो ही हम ये मसाइल पढ़ते हैं, हमें कभी अपनी खाला की बेटी याद आती है, कभी फूफो याद आती हैं, वो तो ऐसे करती थी, उन्होंने तो कभी ये किया नहीं, और खास तौर पर जो लोग बेचारे ऐसे ही करके दुनिया से चले गए, तो अब क्या हुआ। तो कोई बात नहीं, हो गया उनका, आपको पता चल गया, तो आप उसको बेहतरीन और आसान तरीके पे करेंगे। ठीक है, अगली हदीस पे जाते हैं। हर हदीस से एक एक बात भी समझ आती है तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अगली रिवायत है 186, अन मैमून रदियल्लाहु अन्हा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कालत। हजरत मैमूना जो कि ज़ौजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उनसे रिवायत है, फरमाती है, क्या कहती है, तवद्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया। कैसे, वुदुअ लिस्सलाती, जैसे कि वुजू करते हैं नमाज का, यानी नमाज की तरह का वुजू किया। लेकिन फर्क क्या था, गैर रिजलई ही, सिवाय अपने पाँव के, यानी अपने पाँव को नहीं धोया, पाँव से पहले वाला पूरा वुजू किया। अब देखें दूसरी रिवायत मिल गई, पहली रिवायत से ये नहीं पता चला था कि वुजू पूरा किया था, पाँव धोए थे कि नहीं धोए, बस हजरत आयशा जो एक जौजा थी उन्होंने ये देखा। दूसरी जौजा फरमाती हैं कि आपने वुजू की तरह वुजू किया लेकिन पाँव नहीं धोए। फिर उसके बाद किया, वह गसल फर्जहू, फिर अपनी शर्मगाह को धोया, वमा असाबहु मिनल अज़न, और जो कुछ पहुंच चुका था उसको गंदगी से, अलाइश से, यानी जिस्म पर अगर कोई अलाइश थी, कोई सेक्रीशन थी, तो उसको धो दिया। थुम्मा अफाद अलैहि अलमा, फिर उस पर डाल दिया पानी, थुम्मा फिर नहया रिजलई ही, फिर आप एक साइड पर हो गए और धो लिया अपने पाँव को। वो वजू किया बगैर पाँव धोए, फिर शर्मगाह धोई ताकि जिस्म पर जो गंदगी थी वो दूर हो जाए, फिर सारे जिस्म पे पानी सहरा डाल दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद किया फ़गसलहुमा, फिर पाँव को धोए, कैसे, नख़ रिजलई ही, फिर अपने पाँव को एक साइड पे करके धोया इन दोनों को। हाज़िही गुस्लुहु मिनल जनाबती, ये था आपका गुस्ल जनाबत से। अब आप देखिए कि इन दोनों चीज़ों को देखिए, पहली बात देखिए कि अल्लाह के नबी की अजवाज की शान भी नज़र आती है। अल्लाह ताला ने उनको इस काम के लिए चुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो प्राइवेट मैटर्स थे वो भी उम्मत के सामने आए। और आपकी बहुत सारी शादियों के बीच में ये भी एक हिकमत थी कि आपकी बीवियाँ उम्मत की माएँ भी बनी और उम्मत के लिए मुअल्लिमात भी बनी। बीवी के सिवा तो कोई ये चीज़ नहीं बता सकता ना, और ऐसी बातें जो बताई जाएँ, आप कहेंगे कि ठीक है बताने से बता देते, अल्लाह के नबी एक दिन बैठ के तरीका सिखाते, तो इसको आप मेरे से भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक किसी काम को प्रैक्टिकली देख ना लिया जाए, पढ़ने से या बताने से समझ नहीं आता। ठीक है, आप जितनी मर्जी तरकीबें देख लें, लेकिन जिस दिन पकाने खड़े होते हैं तो पहले स्टेप पे सोच में पड़ जाते हैं कि इस वक्त क्या किया था या इसको कैसे लेना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल थ्योरी थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के जरिए से बताई गई। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या समझ आती है कि गुस्ल जो है दूसरों से छुपा जाएगा, पर्दे का एहतमाम किया जाएगा। अब बीवियां कैसे देख रही थी, हमें इस पे ज्यादा सोचने की बात नहीं, लेकिन देखिए शर्म में कोई शर्म नहीं है, अल्लाह ताला ने दीन में किसी बात को छुपाया नहीं है। तो शोहर बीवी को और बीवी शोहर को देख सकता है, उसका सतर देख सकता है, गुसल साथ कर सकते हैं, अगली हदीस में हम पढ़ेंगे, हत्ता के मरने के बाद शोहर बीवी को गुसल दे सकता है, बीवी शोहर को। इसकी दलील क्या है, सोचिए जरा, अपने जहन पे जोर डालें। बहुत शुरू में पढ़ लिया था आपने कुरान के सफर के, शायद इसलिए भूल ना चुके हों। चलिए सूरत बकरा, चलिए एक और आखिरी टिप, दूसरा पारा, हाँ, हुन लिबासुल्लकुम वअन्तुम लिबासुल्लहुन, तुम उनका लिबास हो वो तुम्हारा लिबास है, तो बदन और कपड़े के बीच में आड़ तो नहीं होती ना, तो लिहाजा इन मसलों पे हमें इस्लाम की खूबसूरती दिखती है। अब आपके जहनों में क्वेश्चन होगी, कुछ लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ना उस बिला के, देख नहीं सकते, देखा नहीं, और एक रिवायत हजरत आयशा से न जाने कैसे लोग अखज करते हैं कि जी वो गधे की तरह बरहना ना हो जाओ, लाइक दिस। तो ऐसी कोई बात नहीं, दीन फितरत है इस्लाम, بلا وجہ بلا ضرورت انسان برہنہ ہونے کو پسند نہیں کرتا کسی کے سامنے آنے کو، لیکن کیا ادھر ضرورت ہے؟ ہے نا، تو پھر بات پوری ہو گئی. ضرورتاً تو عورت بھی عورت کو دیکھتی ہے بچے کی ڈیلیوری کے وقت میں، کہیں بھی ایسے وقتوں میں ڈاکٹرز کو دکھانے میں، تو لہٰذا عام طور پہ تو نہیں لیکن بیوی دیکھ سکتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس وقت بھی علم حاصل کرنے کا تھا. یہاں ایک اور چھوٹی سی سائڈ کی چیز ہے، ایشو بہت پرائیویٹ ہے لیکن بتانے لازم ہے، کیسے وقت میں جو بہت ہی زیادہ ایموشنل لمحے ہو سکتے ہیں، لیکن بیویوں کی نظر کس پہ؟ آپ سے سیکھنے کی کہ آپ کیا کرتے ہیں تاکہ ہم کریں. تو یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بڑی خوبصورت مثال ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر اب ہم دیکھیں کہ ہم غسل کیسے کریں، تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں. سب سے پہلی بات، ہم غسل جنابت کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو آپ کو بتا دوں کہ کتاب الطہارہ جو اقبال گیلانی صاحب کی بک ہے، تفہیم السنہ سیریز، ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس میں غسل، وضو، پیریڈ سب کو الگ الگ شو کیا ہوا ہے، تو بڑی ڈیٹیلز ہیں اس میں. چونکہ یہ حدیث ہے، حدیث کا سٹائل اس بک سے فرق ہے. یہاں تو ہم صرف وہی حدیث پڑھیں گے نا جو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس میں بعد میں تھوڑی سی چیزوں کو ایڈ کیا گیا ہے. تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنابت کے غسل کے لیے لازمی کیا ہے کہ انسان آف کورس پردے کا اہتمام کرے. پھر سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں گے، کیونکہ ہاتھ صاف ہوں گے تبھی تو پھر باقی چیزوں کو بھی صاف کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ پرائیویٹ پارٹس کو دھویا جائے گا، شرمگاہ کو دھویا جائے گا، اگر کوئی گندگی ہے تو اس کو دور کیا جائے گا. پھر اس کے بعد وضو کیا جائے گا جیسے کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے. پھر پاؤں نہیں دھوئیں گے اس میں، کیونکہ پاؤں تو پورے ابھی پانی پھر بھی بہنا ہے نا، اس میں لاجک بھی سمجھ آتی ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. وضو کیا جائے گا لیکن پاؤں نہیں دھوئے جائیں گے. اب جب سارے سر پہ پانی ڈال کے جسم دھوئے گا تو سارے جسم کی گندگی پاؤں پہ پھر پڑنے والی ہے، تو اس لیے پہلے پاؤں دھونے کا اہتمام نہیں ہے. اس کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ کا چلو بنایا جاتا ہے، جیسے پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا غرفتم غرفوں کا لفظ، چلو بنا کر بالوں کی جڑوں میں ایسے پانی ڈالیں جس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے پہلے دور میں لوگ تیل ڈالتے تھے سروں میں. مقصد کیا ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے ان کو تر کر دیا جائے. اب اس میں پانی کہیں پہنچا کہیں نہیں، لیکن سنت سمجھتے ہوئے تین دفعہ کر لیں، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، مڈل میں. پھر اس کے بعد پورے سر پر پانی ڈال لیں اور سارے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈال دیجئے، ٹھیک ہے. صابن شرط نہیں ہے، شیمپو شرط نہیں ہے، لگا لیں تو حرج نہیں ہے، کچھ بھی گناہ نہیں، لیکن پانی سارے پہ پہنچے. جسم پہ اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو پانی کی رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر وہ دھوئی جائے گی، جیسے نیل پالش ہے یا جسم پہ کوئی پینٹ لگا ہوا ہے، تو اسی لیے پھر اس کو پہلے سے ریموو کرنا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ سب کر لیں اس کے بعد اس جگہ سے ہٹیں، ظاہر ہے کہ وہاں گندگی گری ہوئی ہے، تو آپ سائڈ پر ہو کر پھر پاؤں دھو لیں. اب آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم تو شاور میں ہوتے ہیں، ٹب میں یا سنک کہیں بھی، تو بس آج کل تو ساتھ ساتھ پانی بہتا جاتا ہے، تو پھر آپ پاؤں اینڈ پہ دھو لیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شروع میں ہم نے وضو کیا تھا، کیا یہ وضو ہمارے لیے کافی ہوگا بعد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، اور یہاں یہ چھوٹی سی بات پہلے نوٹ کر لیں کہ پاؤں پہلے دھو بھی لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں. سوال کیا ہے کہ کیا یہ وضو جس کو ہم نے کیا تھا شروع میں، اب اس کے بعد ہم اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہت ہی باریکی سے سننے کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا. دیکھیے، شروع میں جو وضو کیا آپ نے، اب یہ وضو کرنے کے بعد آپ نے سر تک پانی ڈالا جسم پر، لیکن آپ کا اپنا لگا، تو پھر آپ کپڑے پہنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ اس سے نماز پڑھیں گے. اور عموماً ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ بعد میں صابن لگاتے ہوئے جسم کو ہاتھ لگ جاتا ہے، بعض وقت کپڑے پہنتے ہوئے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ سب کرنے کرانے کے بعد اینڈ پہ پھر ایک دفعہ وضو کر لیں اور پھر احتیاط سے کپڑے پہن لیں تاکہ برہنہ بدن پر ہاتھ نہ لگے. اس کے بعد پھر آپ اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کپڑے اترے ہوئے تھے اب پھر وضو کیا، کیا اس پہ نماز پڑھیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. تو وہ وضو انشاءاللہ آپ کے لیے پھر نماز کے لیے کفایت کرے گا، ٹھیک ہے. باتھ روم صاف ہوں، پاؤں وہاں بھی دھوئے جا سکتے ہیں، جیسا کہ شاور میں کھڑے ہوں تو پھر تو ساتھ ساتھ دھلتے ہی جاتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں، ان میں کوئی ایک پتلی سی لائن نہیں ہے، ان سب چیزوں کو لے کر ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ دین کی وسعت سمجھ آئے گی. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہے. یہاں بات کر دوں تاکہ تھوڑا سا فرق سمجھ آ جائے، کیونکہ پیریڈز کا غسل مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، شوہر بیوی کا تعلق ایک سے زیادہ بار ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایمرجنسی کے حالات بھی ہو سکتے ہیں. پیریڈز کے غسل میں سر کے بالوں کے اندر تک، جڑوں تک، ایک ایک بال کا بھیگنا سب لازمی ہے، ٹھیک ہے. جو فرق دوسرے غسل سے اس میں وہ کیا ہے کہ جنابت کے غسل میں اگر کوئی چاہے، کوئی عذر ہے، جیسے اللہ کے نبی کے پاس خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم چٹیاں گونتی ہیں، اور اتنی چٹیاں گونتی ہیں کہ پھر وہ کھلتی مشکل ہیں، तो क्या फिर हम अपने सारी चुटिया खोलें, फिर गुसल करें, फिर करें? तो आपने कहा नहीं, यही जो बात अभी हमने देखी, जड़ों में पानी पहुंचा लो। तो अगर आज कोई ऐसे हालात हों तो गुसले जनाबत में पूरे सर के बाल, यानी आप ये कह सकते हैं कि जड़ें तो सारी भीगेंगी, समझिएगा मसला, सर की जो खोपड़ी है ना, स्कल, वो पूरी गीली होगी, लेकिन लंबे बाल जैसे औरतों के होते हैं तो जिसको सुखाने का भी मसला है, वो पूरे ना भी धोएं तो उसकी रुख्सत मौजूद है, लेकिन पीरियड्स के गुसल में वो बालों को भी धोना पड़ेगा। उम्मीद है कि बात वाजे हो गई होगी। अगली रिवायत 187, गुसल रजुली माँ इमरात ही, गुसल करना आदमी का अपनी बीवी के साथ, इस पे क्या हुक्म है? अनायशा रजी अल्लाह अन्हा कालत, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, कहती हैं, कुन तो थी मैं अख्तसिलू, गुसल करती अना मैं व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी, मिन इना इन वाहिदिन, एक ही बर्तन से, मिन कदहिन, वो एक कदह था, बहुत बड़ा प्याला जिसको कह, हमारे यहाँ इसको कह लीजिए टब, युकाल लहू, कहा जाता था उसको, अल फरकू, फरक कहा जाता था। यानी हजरत आयशा के इस अमल से पता चला कि ये मसला हमने पढ़ा, ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इससे कितनी वाजह तौर पर उस बात की हमें रोशनी मिलती है जो हमने आगाज में की, कि तुम उनके लिबास हो, वो तुम्हारे लिबास हैं। फिर अगली रिवायत देखिएगा, अल गुस्ल बिसाई व नहवी, एक सा, सा पैमाना है, जैसे हमारे यहाँ लीटर्स और मिली लीटर्स एंड ग्राम और गैलन्स हैं, तो सा एक पैमाना है, या फिर इसके करीब नहवी ही भी कहते हैं, नहवी जालिका भी कहते हैं, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं हदीसों में, क्या इसी की तरह, जैसे लाइक हम कहते हैं सिमिलर टू दिस, यानी एक सा या तकरीबन उसके करीब, सवा सा, पौना सा, डेढ़ सा, इतने से पानी से गुसल किया जा सकता है। देखिए कितनी कमी होती थी उस दौर में पानी की, कि एक सा पानी उसके साथ भी नबी सल्लम वजू कर लिया करते थे। हदीस पढ़ के इस पर बात करेंगे। वन हरदी अल्लाह सुइलत अन गुसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही से रिवायत है कि जब इनसे नबी सल्लम के गुसल जनाबत की कैफियत मालूम की गई, यानी कैसे करते थे, यहाँ से भी नोट कीजिए कि सहाबा कराम और सहाबियात अज़वाज मुतहरात से ये मसाइल पूछा करते थे, बताया कि वो कैसे करते थे या उसकी क्या कैफियत होती थी। फदाअत, तो उन्होंने मंगवाया, ये जो दाअत है ना, वही है जो दा या दू दावत है, उन्होंने मंगवाया भी इनाइन, एक बर्तन, नहवी मिन साइन, जिसमें एक सा के बराबर पानी आता है, यानी एक ऐसा टब मंगवाया हजरत आयशा ने जिसमें तकरीबन एक सा पानी आ सकता था। फख तसलत, तो फिर इससे गुसल किया। व अफादत अला रासीहा, और अपने सर पर पानी भर, अफादत क्या है कुरान में कहाँ आया बताएंगे जी, सुम अफीद मिन है सुफादन नास, जी वही है, फिरना होता है पानी, पलटना, घूम के आना किसी चीज की तरफ से दूसरी तरफ जाना, मतलब यह है कि तुम उस काम को करते हुए इस काम को करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि आपने क्या किया कि पानी सर पे डाला, फिर शुरू किया फादात अलरा से, सर के ऊपर पानी डालने से, व बेनहा, और उनके व बेन साइली और सवाल पूछने के दरमियान में हिजाबन पर्दा था। इसमें बहुत सारी बातें, देखिए ये वो हदीस है जो मुनकरीन हदीस जो है उनको बहुत ही खोलती है। पहली बात देखिए कि यहाँ पानी की कमी की बात है, इसराफ ना करें तो एक साथ पानी से गुसल हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें हजरत आयशा ने गुसल करके दिखाया, तो ये कैसे हो सकता है? तो अब इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, कहते हैं देखो ये बहुत बुरी बात है, लोगों के सामने गुसल किया है, बस हदीसें तो ठीक ही नहीं होती और दिस एंड दैट। हालांकि आप देखें कि उन्होंने गुसल पसे पर्दा किया था, और जिनके सामने आपने गुसल किया था वो आपके महरम थे, एक आपका रिजाई भांजा था और दूसरा रिजाई भाई था। इस पे बहुत तफसील होती है, हमारा ईमान है कि हमारे दिल में एक जरा बराबर भी शक नहीं है इस बारे में, ठीक है। ये ऐसे ही होता है कि जैसे कोई काम आप कर रहे हैं तो उसके बारे में साथ साथ बताते भी जाते हैं, जैसे कोई बात अभी इस वक्त मैं आपको वजू का तरीका बताती हूँ यहाँ, तो बाद में जब लोग रिकॉर्डिंग से सुनते हैं तो उनको वो दिख तो नहीं रहा होता ना, लेकिन आपको बताने से और कुली के आवाज से मैं अगर आवाज करके दिखाऊं तो उनको समझ में आने लगता है। ये कुछ इसी किस्म की कैफियत थी कि लोग आपको देख नहीं रहे थे, सिर्फ आपके एक्शन से बात को समझ रहे थे। अगली रिवायत देखते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुम अन्नहु सअलहु रजुलन, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि इनसे किसी शख्स ने सवाल किया, किसके बारे में, अनिल गुस्ली, गुसल के बारे में पूछा, तो फकाला, तो कहा, यकफी का सान, तेरे लिए एक सा पानी काफी है। फकाला रजुलुन, एक शख्स बोला, मा यकफी नहीं, मुझे ये काफी नहीं है, यानी मैं ज्यादा पानी चाहता हूँ, मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती है। फकाला जाबिरुन, तो जाबिर रजी अल्लाह उन्होंने ने कहा, कान यकफी मन हुआ औफा मिन कशारन, सुभान अल्लाह, था ये पानी किफायत करता उस शख्स को जो तुझसे भी ज्यादा बाल रखता था। औफा वही है वफा वाला पूरा होना, यानी उनको जिनके बाल तुमसे लंबे थे उनको भी एक एक सा पानी गुसल के लिए काफी होता था। वखैरु मिनक, और वो तुझसे बेहतर थे। इशारा क्या था? नबी सल्लम की तरफ। सुम्मा फिर अम्महुम, फिर उन्होंने इमामत की, फी सौबिन, एक ही कपड़े में हमारी, सुभान अल्लाह। पहली बात देखिए, हजरत जाबिर यह हदीस बयान कर रहे हैं, हदीस के खिलाफ बंदा बात कर रहा है ना कि मुझे नहीं चाहिए, माँ यकफी नहीं, तो सख्ती से समझाया आपने, ये कैसे हो सकता है तुझे काफी नहीं होता, लेकिन इसमें दुरुस्तगी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी बात देखिए कि अल्लाह के नबी को कितने खूबसूरत लफ्जों में अंदर पर्दा बात कर रहे हैं आप, कि देखिए उनको ये पानी किफायत कर जाता था। फिर उसके बाद देखिए, आपने उसी एक कपड़े में हमारी इमामत कराई, मुराद है कि जिस्म पर पानी के असरात थे, आपके बदन पर एक ही कपड़ा था और आपने उसी से गुसल कर लिया। तो अल्लाह ताला के नबी का ये अमल हमें दिखता है। अगली रिवायत भी साथ ही देखेंगे, फिर इंशाल्लाह इन पे बात हो जाएगी। अगला बाब के मन अफाद आला रासी सलासन, सर पर 3 बार पानी बहाने का बयान। अन जुबैर इब्ने मोतमिन रदी अल्लाह अन्हु काल, हजरत जुबैर बिन मोतम रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा अना फउफीदु अला रासी सलासन, मैं तो अपने सर पर 3 दफा पानी बहाता हूँ, यानी मैं तो सर पर 3 दफा पानी बहाता हूँ। फिर इसके बाद क्या किया, वह अशार अभी यदई ही, फिर आपने इशारा किया अपने दोनों हाथों से, किल तई ही माँ, इसी तरह, यानी ये कहकर आपने अपने दोनों हाथों से इशारा फरमाया। तो सर पर 1 दफा नहीं 3 दफा पानी डाला जाएगा, जो बात शुरू में हो गई। फिर एक और जरा डिफरेंट सी चीज समझ लीजिए, बाप है मन बदा बिल हिलाबी अव तीब इन दल गुसली, वो शख्स जिसने शुरू किया हिलाब, हिलाब होता है दही, यानी अरब लोग इस्तेमाल करते थे चिकनाई की कोई चीज ताकि जिसम से गंदगी उतर जाए, या बाल खूबसूरत हो जाए, या वट एवर, जैसे ब्यूटी शावर होते हैं, या फिर खुशबू, तीब कहते हैं खुशबू से इब्तदा करना। अनायशा रजी अल्लाह अन्हा कालत, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे नबी सल्लम, इज़ अग्तसला, जब गुसल फरमाते, मिनल जनाबती, जनाबत से, दा बिशयइन, मंगवाते कोई चीज, नहवल हिलाबी, हिलाब जैसी, फअखज़ बिकफ्फिही, फिर इसको अपने हाथ में ले लेते, फबदा, फिर शुरू करते, बिशिक्की रासिहिल अयमन, फिर अपने सर के दाएं हिस्से से इब्तदा करते, सुम्मल ऐसरी, फिर बाई जानब लगाते, यानी पहले दाई तरफ कोई लगाते, जैसे शैम्पू आप लगा रहे हैं या कंडीशनर लगा रहे हैं, तो पहले दाई तरफ लगाते फिर बाई तरफ लगाते। फ़काल बिहिमा अला वसति रासी ही, इसके बाद अपने दोनों हाथों से तालू पर मालिश करते, यानी अल्लाह के नबी हर काम में दाएं हाथ को पसंद करते थे, बाएं हाथ से शुरू नहीं करते थे। तो इसमें क्या पता चला कि इंसान अपने ऊपर इन चीज़ों को लेकर बेहतरीन तरीके से अजर भी कमा सकता है और अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार भी कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा दीन कितना खूबसूरत है, कि कैसे ये अच्छे तरीके से सारे मसाइल बयान करता है, और इसके अंदर अपना भी फ़ायदा भी है और इसके साथ साथ तहारत भी होती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि सहाबे कराम का इल्म लेने का अंदाज देखिए कि कितने मुख्तात थे, और उसके बाद फिर वो अपने आप को इन चीज़ों में दूसरों के साथ लेते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें भी इन चीज़ों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।